बीबीसी इंडिया बोल तारीख 7 अक्टूबर दिन शनिवार। मैं हूँ वात्सल्य राय। मूछें रखने के कारण गुजरात में दलित युवकों पर हमला, गरबा देखने पर हत्या। गुजरात जैसे प्रगतिशील राज्य में क्यों है निशाने पर दलित? दलितों के गुस्से का विधानसभा चुनावों पर कितना असर पड़ेगा? इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन कीजिए 1811-7000 और 1811-7001। चर्चा में शरीक होंगे बीजेपी सांसद उदित राज और स्वतंत्र लेखक सुनील वर्मा, जो खुद दलित समुदाय से आते हैं। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, रजनीश कुमार से। कैटालोनिया को अलग देश बनाने को लेकर स्पेन में तनाव जारी है। हाल में ही स्पेन के उत्तर पूर्वी स्वायत्त इलाका कैटालोनिया में स्वतंत्र देश बनाने को लेकर जनमत संग्रह कराया गया था। इस जनमत संग्रह में 90% लोगों ने स्पेन से अलग देश बनाने के पक्ष में मतदान किया था। शनिवार को राजधानी मैड्रिड में हजारों लोग स्पेन की एकता के समर्थन में एक रैली में शामिल हुए। इस रैली में गवर्निंग पीपल्स पार्टी के एक सांसद पाब्लो कसावो ने शांति की अपील की, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कैटालोनिया कभी एक आज़ाद देश नहीं बन सकता है। इस अभियान से जुड़े लोग स्पेन और कैटालोनिया में संवाद शुरू करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ स्पेन की सरकार ने कहा है कि कैटालोनिया को अलग नहीं होने दिया जाएगा। स्पेन ने कैटालोनिया से स्वायत्तता छीन लेने की भी चेतावनी दी है। मैड्रिड की रैली में शामिल टेरेसा रोमोस ने कहा, हम लोग दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम साथ हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कैटालोनिया अलग हो। हम ये भी नहीं चाहते हैं कि गतिरोध कायम रहे। हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो पूरे हालात से डरे हुए हैं। लोगों में स्पेन की एकता की भावना है। टेरेसा रोमोस के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरे में अपने जन्मस्थान वडनगर भी जाएंगे। इस यात्रा की शुरुआत मोदी ने द्वारकाधीश मंदिर से की। गुजरात में विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसे प्रधानमंत्री का चुनावी दौरा माना जा रहा है। इससे पहले मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी गुजरात का दौरा कर चुके हैं। बॉलीवुड के फिल्म निर्देशक कुंदन शाह का शनिवार सुबह निधन हो गया। 19 अक्टूबर 1947 को जन्मे कुंदन शाह 69 साल के थे। फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से निर्देशन की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने जाने भी दो यारों से 1983 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस फिल्म के वो सहायक पटकथा लेखक भी थे।
डेफिनेटली इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस है, बिकॉज इनके जैसा टैलेंट और इन्होंने जो फिल्में बनाई हैं वो कल्ट फिल्म, वो हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अहम फिल्में रही हैं हमेशा। जाने भी दो यारों हैज बीन वन ऑफ माई कंप्लीट फेवरेट, लाइफ लॉन्ग फेवरेट कह सकते हैं कि इनक्रेडिबली बहुत ही खूबसूरती से बनाई थी फिल्म। इनके जैसा ह्यूमर विथ सो मच ऑफ डेप्थ अबाउट लाइफ इम्पॉसिबल है किसी के पास मिलना।
फिल्म निर्देशक कुंदन शाह के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि शोक जता रहे थे अभिनेता दीपक तिजोरी। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने आधिकारिक रूप से गठबंधन सरकार बनाने के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। मर्केल ने लिबरल्स और ग्रीन पार्टी से अपनी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना जताई है। यह पहली बार है जब क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी सरकार बनाने की कोशिश ग्रीन पार्टी के सहयोग से कर रही है। जर्मनी में आम चुनाव में कंजर्वेटिव की करारी हार के 2 हफ्ते बाद मर्केल ने यह घोषणा की है। तुर्की के विदेश मंत्री ने जर्मनी से संबंधों में सुधार की उम्मीद जताई है। जर्मनी में आम चुनाव के दौरान दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। हालांकि उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोवान द्वारा जर्मनी की तुलना नाजियों से करने का बचाव किया। एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि वो जर्मनी से टकराव नहीं चाहते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि तुर्की को एक दिन यूरोपीय संघ का सदस्य बनाया जाएगा। हाल ही में जर्मनी के नेताओं ने यूरोपीय यूनियन से तुर्की की सदस्यता को लेकर जारी बातचीत खत्म करने को कहा था।
बीबीसी इंडिया बोल सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। गुजरात जैसे प्रगतिशील राज्य में क्यों निशाने पर हैं दलित? दलितों के गुस्से का विधानसभा चुनावों पर कितना असर पड़ेगा? इंडिया बोल में आज चर्चा इसी विषय पर हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं। टोल फ्री नंबर एक बार फिर आपको बता देते हैं 1811-7000 और 1811-7001। स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान बीजेपी सांसद उदित राज और स्वतंत्र लेखक सुनील वर्मा, जो दलित समुदाय से ही आते हैं और उनके प्रतिनिधि के तौर पर उनकी बातें यहाँ रखेंगे। स्वागत है उदित जी आपका और सुनील जी आपका भी, स्वागत उन तमाम श्रोताओं का भी जो हमें सुन रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
दलितों का ठेका लेकर के चलने वाले कुछ लोग बौखला गए हैं और दलितों को किसी भी प्रकार से पीड़ित करके इश्यू खड़ा करने के खेल खेले जा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई तकलीफ है तो वार करना है तो मुझ पे करिए, मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए।
ये आवाज आप पहचानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल अगस्त में तेलंगाना में हुई एक रैली में ये बयान दिया था। उस वक्त गुजरात में उना में दलित समुदाय के लोगों के साथ मारपीट को लेकर देश में एक नाराजगी थी। एक साल बीत गया है, 21वीं सदी का 17वां बरस भी बस गुजरने को है, अक्टूबर का महीना चल रहा है, लेकिन एक बार फिर मुद्दा गर्म है। दलितों के साथ मारपीट, भेदभाव, यहां तक कि हत्या की खबरें उस राज्य से लगातार आ रही है जो न सिर्फ प्रगति के पैमाने पर आगे कहा जाता है बल्कि जिसके साथ अहिंसा के पुजारी कहे जाने वाले महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी की जन्मभूमि होने का गौरव भी जुड़ा है। उना की घटना राष्ट्रीय विमर्श का विषय बनी थी और अब ताजा घटनाएं ध्यान खींच रही हैं। गुजरात के गांधीनगर में कथित तौर पर मूछ रखने को लेकर दो दलितों की पिटाई कर दी गई। ऐसी एक और शिकायत सामने आई जिसे पुलिस ने सही नहीं पाया है, लेकिन सितंबर की कथित दोनों घटनाओं को सही बताया जा रहा है। आणंद जिले में गरबा में शामिल होने को लेकर एक दलित की कथित तौर पर इस कदर पिटाई की गई कि उसकी मौत हो गई। इस मामले में 7 लोग गिरफ्तार हैं और मामले की जांच चल रही है। हम स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बात सुनते हैं। जी, नाम बताएं अपना और क्या कहना चाहते हैं आप?
हेलो सर, मोहम्मद रहीम बोल रहे हैं
जी,
डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद ग्राम पंचायत पीपल थाना से।
जी बताइए बताइए मोहम्मद साहब।
बड़ा अफसोस का विषय ये है कि आज हम गुजरात से ऐसी घटनाएं सुन रहे हैं कि मुंह झटने पर या फिर गरबा में शामिल होने के लिए दलितों पर अन्याय किया गया है। मतलब जो दलित हमेशा से दबे कुचले थे और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम इनकी रक्षा करेंगे, लेकिन ऐसी घटनाएं होती हैं तो बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री
जी बहुत अफसोस की बात है। आप ये कहना चाहते हैं, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। उदित जी हम आपके पास आएंगे, लेकिन पहले सुनील जी से जो एक प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ बैठे हैं जान लेते हैं कि क्या कहना चाहेंगे आप।
सबसे पहले तो मैं इस मैटर पर यही कहना चाहूँगा, जो ये कोई नया मुद्दा नहीं है, दरअसल ये आए दिन और हज़ारों सालों से ये दर बदर चलता आ रहा है, कभी किसी इशू को लेके, कभी इशू कोई इशू को लेके। तो अभी जो ये मूछों वाला मुद्दा है, मैं बस इस पर इतना कहना चाहूँगा कि ये एक पूर्वाग्रसित जो होता है ना, कि पहले से ही लोगों की एक अवधारणा जो बनी होती है, एक अपनी सोच बनी होती है कि मूछ है तो उस पर केवल एकाधिकार है एक कुछ उच्च जातियों का, तो जबकि ऐसा नहीं है। संविधान सभी को समान हक देता है जीने का, सारी जो भी वो करना चाहे स्वतंत्र रूप से उनका हक देता है, तो इस पर किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेके ये जो घटना हुई है गुजरात में, ये बहुत गलत है।
कई घटनाएं एक के बाद एक इस तरह की हुई है। उदित जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लंबे वक्त तक आपने कई इस तरह के मुद्दे उठाए हैं, अब आप एक सांसद भी हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं क्या लगता है आपको, कैसा आपको लगता है, क्या प्रतिक्रिया होती है?
सबसे पहले आप मेरा परिचय दुरुस्त कर लें, अगर मैं सांसद हूं तो सबका प्रतिनिधि हूं, तो इसलिए
जी बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा था।
नहीं आप सुन लीजिए, मैं सांसद के रूप में यहां इस समय नहीं हूं, मैं दूसरे रूप में
जी,
जिसके वजह से आपने बुलाया है
जी।
मैं परिसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, नौकरी छोड़ करके, एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स के पद को छोड़ करके मैं दलितों के आरक्षण की लड़ाई लड़ना शुरू किया, निजी क्षेत्र में आरक्षण की भी, और उसमें उत्पीड़न की भी बात आती है। सवाल मैं करना चाहता हूँ ऐसी मानसिकता से कि क्या ये दलित इंसान नहीं है? नंबर। दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ कि दूसरे देश के लोग आज ग्लोबलाइज हो गया हर चीज़, क्या सोचते होंगे। तीसरी बात है कि इतनी बड़ी आबादी को आप अलग थलग करके क्या ग्लोबल इकोनॉमी बनाई जा सकती है। चौथी बात यह है कि इतनी बड़ी आबादी को अपमानित करके रखना, उनको वंचित करके रखना, क्या ये राष्ट्रीय भावना के प्रति है। राष्ट्र केवल नदी पहाड़ नालों हवा आसमान से नहीं बनता, इंसानों से बनता है
जी।
तो इससे बड़ा कौन सा राष्ट्र विरोधी गतिविधि हो सकती है कि उसी राष्ट्र में उसी धरती पर रह रहे लोगों के साथ छुआछूत करना, गरबा देखने पर मार दिया जाना। और अतीत में आप जाएं देखें स्थितियां और ख़राब थी, जैसे बिहार वगैरह में पिपरा है, भटोही टोला है, भटानी टोला है, पारस बीघा है, शंकर बीघा है, जहां सैकड़ों दलितों को जला दिया जाता था, भून दिया जाता था
जी,
और जगहों पर अत्याचार होते। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक राजनीतिक लोग इस बात को लेकर के किसी घटना को कि इसकी सरकार है तो इसके यहाँ अत्याचार हुआ
जी,
इसके यहाँ, तब तक इसका समाधान
नहीं हो सकता। आप ये कहना
चाहते हैं इसका इसकी जड़ सामाजिक
जी,
इसको केवल कानून व्यवस्था से जोड़ देना ही इस मुद्दे को नजरअंदाज करना
जी, नजरअंदाज करना, यही बात हम कहना चाह रहे हैं। क्योंकि दलितों के साथ हिंसा और भेदभाव के आरोप देश के अलग अलग हिस्सों से भी आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं, लेकिन गुजरात की हम आज बात कर रहे हैं और गुजरात इस पैमाने पर काफी आगे है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की साल 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसकी आपको भी जानकारी होगी, अनुसूचित जाति के लोगों पर होने वाले हमलों जिनमें गंभीर रूप से चोट आई है, ऐसे मामलों में गुजरात देश में दूसरे नंबर पर है। ऊना का मामला तो सबको याद है, हमलावरों ने वहां कथित गौरक्षकों ने न सिर्फ दलित समुदाय के लोगों की पिटाई की बल्कि वीडियो बनाया, वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया जो वायरल हो गया। 23 सितंबर 2016 यानी पिछले साल ऊना की घटना के बाद बनासकांठा जिले के करजा गांव में दलित परिवार पर हमला किया गया। दलित परिवार के एक सदस्य को गांव के ही एक परिवार ने मरा पशु उठाने को कहा, लेकिन उस समय आंदोलन चल रहा था, उन लोगों ने मरा पशु उठाने से मना कर दिया, तो 6 लोगों की परिवार की पिटाई की गई जिसमें एक गर्भवती महिला भी शामिल थी। इसके बाद आणंद जिले के निसराया गांव में एक दलित युवक ने अपनी बाइक पर बापू लिखा हुआ था, जिसकी बात अभी उदित जी आपने की जी, और सुनील जी आपने भी की। तो बापू एक खास समुदाय के लोग वहां लिखते हैं, इसको लेकर उसकी पिटाई कर दी गई। इसके बाद डीसा तालुका से भी इस तरह की एक खबर आई जहां 27 परिवार छुआछूत की वजह से घर छोड़कर कई किलोमीटर दूर जाकर चले गए। और अब यह भी कहा जा रहा है कि दलित समुदाय के युवा क्योंकि ऐसे मामलों को उठाने लगे हैं सोशल मीडिया पर, ये मूछों वाले मामले पर भी कई लोगों ने अपनी सेल्फी डाली, इसलिए इस तरह के मामले सामने आ गए। उदित जी मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं आप।
हेलो
जी, जी बताएं, अपनी बात रखें।
वासल जी नमस्कार।
जी नमस्कार,
मैं कटिहार से जयंत कुमार दास बोल रहा हूँ।
जी बताइए जयंत जी, क्या कहना चाहते हैं।
मेरा कहना ये है कि जो सत्ता में जो सरकारें हैं वो तो कॉर्पोरेट घराना का पोषक है और वो कॉर्पोरेट घराने सिर्फ मुनाफा में लगा हुआ है और ये लोग यही कहीं संप्रदाय की दंगा करते हैं, कहीं दलितों को डराते धमकाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। उदित जी तो साथ में उनके हैं,
उदित जी आप साथ में उनके हैं, ये सवाल इनका है, जयंत पूछना चाह रहे हैं कटिहार बिहार से, इनका सवाल है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है।
देखिए ऐसा जो चश्मा आपको चढ़ा हुआ है कॉरपोरेट घराने पूंजीपतियों का, ये चश्मा उतार दीजिए, वो अलग बात है कि कॉरपोरेट घराने पूंजीपति शोषण करते हैं मुनाफा कमाते, एक प्रश्न है। दूसरा यह है कि ये जाति व्यवस्था अलग है, जगजीवन राम जी इतने पावरफुल मिनिस्टर थे और उस समय उन्होंने जब संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण वाराणसी में किया गया था, उसके बाद में दूध से धुलाई गई थी, क्या वो कमज़ोर थे, क्या पैसा नहीं था उनके पास। ये सामाजिक व्यवस्था है जिसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, इसको आप पूंजी से जोड़ेंगे तो असली मुद्दा दब जाएगा, ये है जातिवाद, ये है मानसिकता है। इसी तरीके से चाहे जितना अमीर मजबूत दलित हो या कमज़ोर हो, वो नफरत का शिकार होता ही होता है, जात पात उसके साथ किया जाता है, भले कोई आदमी सामने से डर के न करे। ये जो सरकारी विभाग में IAS है, IPS है, IRS है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये भी जात पात के शिकार हैं, ज़्यादातर लोग शिकार, इनकी पोस्टिंग गलत जगह होती है, प्रमोशन नहीं हो पा जाता, DPC रोक लिया जाता है, तो इसमें कौन सा पूंजीवाद है? तो आप अपने चश्मे को उतार दीजिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैं कहने दी, यही बिहार है जो मैंने कहा भूटानी टोला है, यही बिहार है जो पारस बीघा है, शंकर बीघा है, बेलची है, पिपरा है, जहां सैकड़ों दलितों को मौत के घाट उतार दिया गया था, तो किसकी सरकार थी? तो केवल सरकार से जोड़ के इसको मत देखिए।
मैं आपसे
उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, इसको राजनीति के भेंट न चढ़ाइए।
उदित जी, आज कई कई राज्यों में और खासतौर पर केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी है और आप भी उसके एक प्रतिनिधि हैं, लोगों का सवाल इस तरह से आएगा। सुनील जी, मैं उदित जी से दोबारा पूछूंगा, मैं आपके अनुभव की बात करना चाह रहा हूं क्योंकि आप एक प्रतिनिधि के तौर पर यहां हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें आ रही हैं, इसलिए ये मुद्दे अब प्रमुखता से सामने आ रहे हैं, और क्योंकि इस बार गुजरात में चुनाव भी है इसलिए भी ये मुद्दे प्रमुखता से उठ रहे हैं।
नहीं, चुनाव है, ठीक है, आने वाले चुनाव आने वाले हैं, अलग बात है, लेकिन उससे पहले अगर हम जाएं 2014 में जाएं तो इसी गुजरात का मॉडल पूरे देश में पेश किया गया था और उसी के आधार पर आज प्रधानमंत्री जी बने हुए हैं मोदी जी, ठीक है। तो उनको जब गुजरात का मॉडल जो उन्होंने पूरे देश को दिखाया था, उस गुजरात के मॉडल में ये सब चीज़ें होना और नेशनल क्राइम की रिकॉर्ड्स की रिपोर्ट में दूसरे नंबर पे गुजरात का होना, इसको कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि अब इसमें ऐसा मान सकते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं सरकारें भी उत्तरदायी हैं उतनी जितनी कि लोग जो जातिवादी मानसिकता रखते हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकारों का भी
उतना, मतलब आप कहना चाहते हैं कि सरकार को आगे बढ़कर एक
प्रमुख
भूमिका निभानी चाहिए।
बिल्कुल।
एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बात भी हम सुनना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका, नाम बताइए और क्या कहना चाहते हैं जी? आप तक आवाज आ रही है मेरी?
हेलो सर।
जी जी, बोले, आप अपनी बात रखें।
परवनी से बोल रहा हूँ
जी, बताइए।
सर, जो ये दलितों की हत्या है, हो रही है, हत्या है, मारपीट हो रही है।
जी जी, बताएं।
निसंदेह एक सामाजिक समस्या है, इससे राजनीति का इससे कोई संबंध नहीं
है। जी, राजनीति का इससे कोई संबंध नहीं है, ये कहना चाहते हैं उदित जी। राजनीति का ये संबंध तो बता रहे हैं कि नहीं है, लेकिन सांकेतिक राजनीति हो रही है, आपकी पार्टी भी करती है, दलितों के घर जाकर पार्टी अध्यक्ष का खाना खाना एक सामान्य हो गया, इस पर सवाल भी कई बार उठाए जाते हैं, खासतौर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री तक ने इसको सवाल उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे 10 साल पहले, उनका एक बयान सामने आया था, शायद आपका भी उस समय ध्यान गया होगा, शायद उस समय आप भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे। वरिष्ठ पत्रकार राजीव शाह की एक रिपोर्ट के अंश में पढ़ रहा हूँ, साल 2007 की बात है, उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्रदेश के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर कर्मयोगी शिविरों में भाषण दिए। कर्मयोगी नाम की किताब में इन भाषणों को प्रकाशित किया गया, हालांकि वो किताब कभी सामने नहीं आई। किताब में मोदी के हवाले से कहा गया था, मुझे नहीं लगता कि ये लोग सिर्फ अपना जीवन यापन करने के लिए काम करते हैं, अगर ऐसा होता तो शायद वो पीढ़ी दर पीढ़ी से जारी रखते हैं। सफाई कर्मियों के बारे में ये बात हो रही थी। मोदी के हवाले से ये भी लिखा गया, किसी एक मौके पर किसी न किसी को तो यह आभास हुआ होगा कि यह काम उन्हें पूरे समाज और ईश्वर की खुशी के लिए करना है, उन्हें यह समझना होगा कि यह काम उन्हें ईश्वर ने दिया है और सफाई के लिए इस काम को उन्हें अपनी आंतरिक आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए सदियों तक जारी रखना होगा। ऐसी आध्यात्मिक संतुष्टि दूसरे समुदाय के लोगों को तो मिलती नहीं दिखती, या इस तरह की अनुभूति नहीं होती, क्या कहेंगे आप, ये सांकेतिक राजनीति है, क्या है ये?
जब वो किताब बाहर आई नहीं
जी, उनके भाषण की अलग अलग जगह
हैं, नहीं तो
मीडिया में आए, टाइम्स ऑफ इंडिया में 2007 में रिपोर्ट।
दूसरी बात है कि सभी सभी समुदाय के लोगों के ऊपर लागू होना चाहिए।
जी, यही मैं जानना चाह रहा हूँ।
और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भारत अगर स्वच्छ नहीं हो पा रहा है या हजारों वर्ष से गंदगी है, मैं तो 40 साल 45 साल पहले से जब से होश संभाला हूँ मैं जानता हूँ कि तब तो गंदगी ज़्यादा होती थी, केला लोग खुद ही खा करके पढ़े लिखे सड़क पर फेंक देते थे। तो इसलिए कि ये गंदगी साफ करने का काम केवल दलित समाज के लोग करें, और 7000 जातियों में से सारी गंदगी करें, एक जाति साफ करने का काम करें, तो भारत स्वच्छ कैसे हो सकता,
कैसे हो सकता है?
स्वच्छ तभी हो सकता है कि जब जात पात खत्म हो, मिटे, तभी हो सकता है। और दूसरी एक बात है कि जैसे एक बिहार है, बिहार जब दूसरे राज्यों की तुलना में पिछड़ा नहीं हुआ करता था 30 साल 40 साल 50 साल 40 साल पहले, तब दलितों के ऊपर ज़्यादा उत्पीड़न होता है, लेकिन अब उत्पीड़न कम हो रहा है। कहने का मतलब कि पिछड़ा मतलब विकास का कोई संबंध नहीं है।
ये जो अंतर विरोध है, राजनीति के जो अंतर विरोध सामने आते हैं, कई बार आपको अपनी पार्टी में भी देखने को मिलता है, जैसे आपने खुद ही कहा, तो क्या आपको लगता है कि इन सवालों के हल कैसे किए जाएं, इनको कैसे उठाया जाए पार्टी फोरम पर भी, पार्टी के बाहर भी? जैसे आपने कहा, जब तक सब सफाई नहीं करेंगे, आध्यात्मिक अनुभव वाली बात नहीं।
देखिए, एक जिम्मेदारी केवल पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, पूरी समाज की है। मैं शुरू करता हूँ शिक्षा वर्ग से, और जैसे यहाँ पर लाखों स्कूल हैं, हजारों कॉलेज हैं, सैकड़ों यूनिवर्सिटीज हैं।
मैं आपसे सर सीधा सवाल पूछना चाहूंगा कि सरकार की जिम्मेदारी आप कितनी देखते हैं?
देखिए, ऐसा सरकार की जिम्मेदारी होता क्या है कि कोई भी पार्टी जाति समाप्त करना नहीं चाहती
जी,
और अभी ये दुर्भाग्य है कि जब हमने जनतंत्र को यहाँ पर लागू किया, यूरोप में जनतंत्र पैदा हुआ, डेवलप वहाँ हुआ, तो जिस तरह से यूरोप में जनतंत्र को लागू किया जाता, उसी तरीके से हमने भी लागू किया कि राज्य का जो चरित्र हो, सरकार का जो चरित्र हो, वो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा तक ही होना चाहिए, चार चीज़ों तक, वेलफेयर स्टेट। जबकि हमारे यहाँ यूरोपियन समाज से भिन्न समाज है, यहाँ पर राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए था, सरकार को सामाजिक संरचना में हस्तक्षेप करना चाहिए। कि
सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही है, मेरा
नहीं, कभी नहीं किया, इसी वजह से जाति टूटी नहीं
जी,
इसी वजह से जाति टूटी नहीं।
अब लोग सरकार से सवाल उठा रहे हैं, गुजरात में चुनाव आने वाले हैं, क्या कोई असर आप देख रहे हैं? क्योंकि युवा जो है, दलित समुदाय से जो आते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डाल रहे हैं, क्या आपको लगता है चुनाव पर इसका कोई राजनीति पर असर होगा, भले ही सरकारें दखल देती हों या ना देती हों जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए?
देखिए, ऐसा है कि छुटपुट घटनाएं सब जगह होती रहती हैं,
ये तो मतलब सीरीज है सर, उना के बाद बनासकांठा, बनासकांठा के बाद गांधीनगर राजधानी में जब हो रहा है, प्रधानमंत्री को बयान देना पड़ रहा है, ये छोटी मोटी घटना नहीं है जिसके लिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर गोली मारनी है तो गोली मुझे मारे।
मैं केवल गुजरात की बात नहीं जी, कहीं भी अगर उड़ीसा में होने वाला हो, बंगाल में होने वाला, तो उस समय उस अंतराल जब करीब होने वाला,
सर,
जब
सुनील जी से भी जानना चाहूंगा,
घटनाओं को ज्यादा ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, ये मैं कहूंगा
जी जी। हाँ, राजनीतिक दल भी करते हैं।
मैं सांसद जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूं, और मैं रिपीट करना चाहूंगा, जैसे कि कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जातिवाद खत्म करना नहीं चाहती, इस बात से मैं सहमत हूँ। बाकी हाँ, सरकार को स्टैंड लेना चाहिए, लेना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम था जब लोग अपनी बात नहीं रख पाते थे।
आजादी के बाद से सरकारों ने कभी लिए ही नहीं स्टैंड
सर, लेकिन अब मोदी जी तो यही बोल के सत्ता में आए थे ना कि हम सबको बराबरी का हक देंगे, समानता के, सब समान व्यवहार किया जाएगा। उनका जो स्टैंड था वो चुनाव से पहले कुछ और था,
सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ एक श्रोता और जुड़े हुए हैं जी, बताए आपका नाम क्या है और आप क्या कहना चाहते हैं?
मैं पहले मत जानता हूँ, एक आम भावना ये होती है
जी,
कि मैं अपने लिए चाहता हूँ दूसरे के लिए करूँ
जी।
सत्ता में ये बैठा हूँ तो मुझे ये चीज, मुझे जो अच्छा लगता है वो सबको अच्छा लगता है।
सत्ता में बैठे हैं तो जो मुझे अच्छा लगता है वो सबको अच्छा लगता है, इनका ये कहना है कि सत्ता और सरकार की तरफ से।
मुझे नहीं कहने का मतलब, अपने लिए कोई बुरा चाहता है क्या
जी?
देखिए मूल विषय
जी, एक और श्रोता हमारे साथ हैं, हम उनकी बात भी सुनना चाहेंगे जी। क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहते हैं?
हेलो
जी जी, बताएं।
मैं मुस्तफिजुर रहमान
जी। रहमान साहब, क्या कहना चाहते हैं?
मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ये जो दलितों पे हमलाएं होती है, ये इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार अगर लेना नहीं चाहती है तो मतलब कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी? सरकार के प्रतिनिधि बैठे हुए, सरकार की नहीं है, सरकार अगर उस बारे में कोई कदम नहीं उठा रही है
जी। उदित जी आपके सवाल का जवाब देना चाहते हैं। रहमान साहब जी, बताए उदित जी।
माँ बाप बेटी को दूध नहीं पिलाते, बेटे को पिलाते हैं। बेटी को स्कूल नहीं भेजते, बेटे को भेजते हैं। बेटी को नया कपड़ा नहीं देंगे, पैंपर नहीं देंगे, और बेटे को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर करेंगे, इसमें सरकार क्या कर लेगी? सामाजिक सोच है, मतलब कहने का ये मतलब है कि जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, सामाजिक संरचना नहीं बदलेगी, वो असली है, जड़ वही है। मैं जड़ पर
जैसे समाज को बदलने की बात की जाती है, मोदी जी ने एक स्वच्छता मिशन अभियान चलाया, स्वच्छ भारत अभियान, तो इस तरह की सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है कि मिशन मोड में आए, शुरुआत सरकार के स्तर से हो, बाकी सामाजिक संगठनों को जोड़ा जाए? आप भी आज उस पार्टी का हिस्सा है जिसकी सरकार है कई राज्यों में भी और केंद्र में भी।
नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि जाति मिटाओ अभियान शुरू होना चाहिए, लेकिन
अभी लेकिन होता क्यों नहीं है?
नहीं छिटपुट होता है, दलित द्वारा करते हैं, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में लाखों लोगों को बौद्ध के साथ बौद्ध बने और उन्होंने कहा कि भारत को बौद्धमय बनाना है, जाति मुक्त बनाना है। लेकिन जब तक सवर्ण नहीं, अपर कास्ट नहीं, जाति उन्मूलन की बात करेंगे, दलितों के करने से नहीं होता। दलित तो हमेशा करते हैं, जब भी पूरे साल में जितनी सेमिनार जयंती कार्यक्रम होते हैं उसमें जाति विहीन समाज की बात करते हैं। एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट रिटन बाय डॉक्टर अम्बेडकर इज अ मोस्ट पॉपुलर बुक एंड ही हैड बीन फाइटिंग ऑल थ्रू आउट फॉर एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, तो उनका तो पूरा यही था। लेकिन हमारे अकेले से या दलितों को करने से जो भुक्तभोगी होगा नहीं,
होगा तो नहीं।
सवर्ण समाज क्यों नहीं आता?
जैसे सवर्ण समाज क्यों नहीं आता? आपका सवाल
गोधरा वाला कांड,
उदित जी हमें
सवर्ण सड़कों में नहीं आएंगे, सवर्ण नहीं एजिटेट करेंगे, वो मुकदमा नहीं लड़ते हैं। ये दलित के ऊपर अत्याचार होता तो दलित ही क्यों आते हैं? तो क्या मैं पूरे सवर्ण समाज से सवाल करना चाहता हूँ कि ये दलित जो है क्या समाज के हिस्सा नहीं है, क्या राष्ट्र के हिस्सा नहीं है?
आपका सवाल अपनी जगह ठीक है। मैं सोशल मीडिया पर भी कुछ कमेंट मिले उदित जी, उनमें से मैं कुछ को पढ़ देता हूं। फेसबुक पर जुनैद अली लिखते हैं, स्पष्ट है कि इस बार के गुजरात चुनाव में धार्मिक संकीर्णताओं के स्थान पर जाति का आधार, आर्थिक समस्याएं, रोजगार, शिक्षा, विकास और दलितों पर हो रहे सामाजिक अत्याचार प्रमुख मुद्दे होंगे। आयुष सिंह लिखते हैं, गुजरात को किसी एक ने महान नहीं बनाया बल्कि गुजरात के मेहनती लोगों ने गुजरात को विकसित बनाया। गुरफान खान का कहना है, गुजरात में दलितों के गुस्से से ज्यादा अहम सवाल राजनीतिक विकल्प का है। भरत यादव कहते हैं, बीजेपी को जरूर नुकसान होगा क्योंकि बीजेपी की सत्ता पर रहते हुए दलितों पर अत्याचार में काफी बढ़ोतरी हुई है। स्नेहा दत्ता लिखती है कि इतने दिन से कुछ नहीं हुआ, चुनाव आते ही दलितों पर हमले होने लगे, मतलब दलित का वोट बीजेपी को ना मिले, ऐसी राजनीतिक साजिश की जा रही है। सबका अपना अपना नजरिया है, सब अपने ढंग से इस मुद्दे को देख रहे हैं। सुनील आप क्या कहेंगे?
नहीं, इसमें जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, सांसद जी ने, कि सरकार का इसमें रोल उतना अहम नहीं है जितना कि सवर्ण या जो उच्च जातियों वाले जो लोग हैं।
तो यानी आप एक तरह से सरकार को क्लीन चिट दे रहे हैं?
नहीं, क्लीन चिट मैं नहीं दे रहा हूँ,
मैं पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल
बस इतना कह रहा हूँ। जैसे अगर सरकार एक जो अपना स्वच्छता अभियान चला रही है, ठीक है, अगर इसी तरह से वो कुछ जाति विशेष को लेकर अगर कुछ तरह के इस तरह के अभियान चलाए जाते, या फिर जैसे कथित गौ रक्षक या जो भी लोग इस तरह की जो हरकतें करते हैं, जो मामले सामने आते हैं जिनमें वो इन्वॉल्व होते हैं, अगर सरकार उन पे एक कड़ा एक्शन लेती, एक अपना स्टैंड लेती, तो कहीं ना कहीं इन पे फर्क पड़ता
है कि सरकार कड़ा एक्शन नहीं ले रही है, इसका मैसेज सही नहीं जा रहा है प्रधानमंत्री के अकेले के बयान से, कुछ चीजें नहीं बयान से चीजें नहीं होती हैं। आप क्या कहेंगे? ये जो एक्शन की बात कर रहे हैं, जो कड़ा कदम लेकर एक मैसेज बाकी लोगों तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं जिससे ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो।
देखिए, ऐसा है कि इन घटनाओं को तभी तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि यहां रिफॉर्म ना हो। लोग तो मरदे मारने पर उनको मौत के घाट उतार दिया जाए तो भी उनके अंदर जाति नफरत होती है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ जो जुल्म होता है, और सांवली लड़की है उससे कोई शादी नहीं करता या कम करते हैं, दहेज ज़्यादा देना पड़ता है।
संक्षेप में, क्योंकि
तो उसमें सरकार क्या कर लेगी? ये जो सामाजिक समस्या,
लेकिन मैं बस आखिरी आपसे जानना चाहता हूँ, राजनीतिक भूमिका आप देखते हैं कोई इस पूरे मुद्दे में बदलाव के लिए, संक्षेप में?
देखिए, ऐसा है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को कभी न कभी तो सोचना पड़ेगा कि ये जो जनतंत्र हमने जिस तरह से यूरोप के मॉडल को यहाँ पर लागू कर रखा, इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने परिवेश के अनुसार जनतंत्र को लागू करना का सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। रूढ़िवादी परंपराएं हैं, सोच है, इनको तोड़ना तो पड़ेगा, जो कि कभी प्रयास नहीं हुआ।
जी, बीबीसी इंडिया बोल में आज इतना ही। चर्चा में हिस्सा लेने के लिए उदित राज साहब और सुनील वर्मा साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उन सभी श्रोताओं का भी आभार जो कार्यक्रम में जुड़े, जिन्हें मौका नहीं मिल सका उनसे माफी। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला देवाशीष कुमार ने, फेसबुक लाइव आप तक पहुंचाया ब्रजेश मिश्र ने। अगले सप्ताह फिर ऐसे ही किसी प्रमुख विषय पर इंडिया बोल में होगी चर्चा। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रह सकते हैं bbchindi.com से। फिलहाल वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।